सोचना है कि सकल गेय की विनती का अर्थ करें, है ना। फिर इसके बाद पूजा संस्कृत वाली जो है उसका देख लेंगे अर्थ। सकल गेय की विनती में भी बहुत भक्ति है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानन,
हमें विचार करने के लिए कहा, लगभग सारी चीज विचार कर ली है। आज उपसंहार होता है उसका, हम एक बार फिर से देख लें कि सबसे पहले मुझे बैठ करके और सुबह शाम 10 मिनट एक निश्चित जगह, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित आसन में बैठ करके इस प्रक्रिया को शुरू करना है। जो मेरे पास नमोकार मंत्र है उसे मुझे धीरे धीरे और उस पर अपनी एकाग्रता के लिए जोर से मन में, होठों में बोल करके उस पर एकाग्रता करनी है। फिर उपलब्धि मुझे सामायिक की क्या हुई है ये मुझे ध्यान में रखना है, क्योंकि समता मेरे भीतर धीरे धीरे आने लगेगी। सुख दुख में, हर्ष विषाद में, लाभ हानि जय पराजय में, इन सब में मेरे भीतर समता भाव आने लगेगा। मेरी यात्रा जो है अशुभ से शुभ की तरफ होना शुरू हो जाएगी। मैं अपनी सीमाओं का स्वयं निर्धारण करूंगा, मैं अपने जीवन का मूल्यांकन स्वयं करने लगूंगा। मेरी अपनी सहिष्णुता, मेरी अपनी प्रतिक्रिया करने की क्षमता, ये सब धीरे धीरे करके बढ़ने लगेंगी, मेरा धैर्य बढ़ने लगेगा। ये मेरी उपलब्धियां हैं। और उस दौरान मैं विचार करूं इस संसार की और मुक्ति की जो वास्तविकता है उसका विचार करूं, और फिर धीरे धीरे करके और अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को बहुत स्पष्ट रूप से अगर अपन देखना शुरू करते हैं तो अपने जीवन में ही, अपना जीवन ही उदाहरण बन जाएगा। एक छोटी सी घटना सुनाऊं, बच्चों के लिए आई थी, वो मैंने पढ़ी थी, अभी अभी बच्चों को सुनाई भी थी, अच्छी लगी उनको, लेकिन अपन को भी अच्छी लगेगी, पर उसको करेंगी तो और अच्छी लगेगी। हाँ, उसको नहीं करेंगी तो अकेली सुनने में अच्छी लगेगी, करके देखें तो और मजा आएगा उसमें। क्या हुआ कि एक बच्चे को बहुत गुस्सा आती थी। समत्व की साधना है, समता की साधना के लिए प्रयोग करके देखें। एक बच्चे को बहुत गुस्सा आती थी, तो उसके पिता ने सोचा कि इसके गुस्से को दूर करने का क्या उपाय किया जाए। तो उससे कहा कि सुनो, वो जो अपने पिछवाड़े दरवाजा है, टूट तो वैसे ही गया है, खराब हो गया है, तो ऐसा किया करे, जितनी बार गुस्सा करो उतनी एक कील उसमें ठोक दिया करे। एक बार गुस्सा करी, जाकर के एक कील ठोक दी, ठीक है। उसने कहा ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने रोज ये काम शुरू कर दिया, कीलें ठोकता चला जाता, लेकिन उसके मन में लगता कि अरे ये पूरा दरवाजा कीलों से भर गया, मैं इतनी गुस्सा करता हूं। तो एक दिन उसने ऐसा किया कि बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, पिता से जाके कहा कि पिता आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी उस पर, क्योंकि मैंने आज गुस्सा नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा करो, जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करो उस दिन एक कील निकाल दिया करे। कहा ये ठीक है, अब तो ये चाव आ गया उसके भीतर कि आज तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कील ठोकूंगा नहीं, निकालूंगा जो ठोक चुकी हैं कीलें। और एक दिन ऐसा आया कि सारे दरवाजे पर जितनी कीलें लगाई थी वो सब निकल गई, और आकर के बड़े हर्षित होकर के उसने पिता से कहा कि पिता जो जितने मैंने क्रोध किया था और कीलें लगाई थी आज मैंने वो सब बाहर निकाल दी, मेरे इतने दिन मैंने बिना क्रोध के व्यतीत किए हैं। पिता ने कहा कि आओ मेरे साथ चलो, चल के देखते हैं कैसी स्थिति है दरवाजे की। तो कहा कि देखो बेटे, जहां जहां तुमने कीले लगाई थी और उनको निकाल भी दिया है, पर देख रहे हो वहां पर अभी छेद तो बने हुए हैं, छेद तो फिर भी बने हुए हैं। एक बार जो हम कर चुकते हैं उसके बाद उसके लिए हम कितनी भी क्षमा भाव धारण कर ले, लेकिन उसका इंप्रेशन, उसका प्रिंट तुम्हारे भीतर बना ही रहता। उस प्रिंट को भी धोने का उपाय क्या है? उस प्रिंट को धोने का उपाय है ये समता की साधना। इतना प्रयोग तो हम बाहर कर लेंगे, लेकिन दिन भर में जो मलिनताएं मेरे चेतना को मलिन बना के गई हैं उन सबको धोने का एक ही उपाय है। सब ने एक स्वर में, सब आचार्यों ने एक स्वर में लिखा है कि श्रावक हो चाहे गृहस्थ हो, जितने भी उसके द्वारा जाने अनजाने अपराध हो जाते हैं, अगर उन सब से मुक्त होने का कोई उपाय है तो एक ही है, सामायिक। सामायिक चारित्र को सबसे श्रेष्ठ माना गया। यथा क्या चारित्र तो है ही श्रेष्ठ, लेकिन सामायिक चारित्र, दूसरे से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक एक ही चारित्र का वर्णन किया गया, सामायिक चारित्र। जाओ, एकाग्र हो, आत्मस्थ हो। जो जितना आत्मस्थ है वो उतना दोषों से मुक्त है। अपन तो थोड़ी देर आत्मस्थ रहते हैं, फिर बाद में दोष करते हैं, फिर से आत्मस्थ होते हैं। इसको कहते हैं छेदोपस्थापना, टूट फूट होने पर फिर से रिपेयर करके और फिर आत्मस्थ हो गए। जैसे उसने किया कि पहले गुस्सा कर लिया, फिर बाद में क्षमा भाव धारण किया, लेकिन एक इंप्रेशन तो बना रहा उसे। हमें उस इंप्रेशन को भी अपने भीतर से हटाने के लिए यह साधना करनी चाहिए। ऐसे छोटे से प्रयोग अगर अपने जीवन में अपन शुरू करें तो कोई वजह नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि जो अपन अपने जीवन को जैसा अपन चाहते हैं बहुत अच्छा वैसा अपन बना सकेंगे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
ए गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तारस पान किया करते सुख दुख दानों की गणियों में। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। दिन रात लुटाया करते वो शम शम के अविनश्वर मणियां। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। तमनाशवे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भाष वे को मानु शिव कानी है। अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरयानी है। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकानो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुमु।
कहते हैं ये हमें पहले से मालूम नहीं रहता कि बाधा किस रूप में आएगी, तो अंतराय कर्म ही या बाधा देने वाला जो कर्म है वो अंतराय कर्म, वो ही रहस्य है। तो अब देखो चार हो गए कि नहीं। मोहनी कर्म का अभाव हो चुका, ज्ञान आवरण दर्शनावरण ये दोनों धूल के समान आवरण है, आवरण करने वाले दोनों वो नष्ट हो गए, और रहस्य अर्थात अंतराय चारों घातीय कर्म आपके समाप्त हो चुके, आपने इनको जीत लिया, इसलिए आप जिनेन्द्र हैं। कर्मारातीन जयती इति जिना, जिसने अपने कर्मों को जीत लिया, या दूसरी परिभाषा कहती है जिसने अपने इंद्री मन को जीत लिया, वो जिनेन्द्र हैं। सो जिनेन्द्र, आप इसीलिए जिनेन्द्र हैं क्योंकि आपने अपने इंद्री मन को जीत लिया, आपने अपने कर्मों को जीत लिया है। और क्या करते हैं आप अपने आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं, और आपके ज्ञान में तीनों लोक चराचर पदार्थ सब झलकते हैं। आप किसी को जानने की कोशिश भी नहीं करते, आप अपने को जानने में लगे हैं, इसलिए तीनों लोक आपके जानने में आ गया है। दुनिया भर की बातें जानते रहो और अपने बारे में बेखबर रहो तो कौन जिनेन्द्र भगवान नहीं बन पाओगे, कहना ये चाह रहे। और अपने आत्मा को जान लो तो फिर बाकी सबको जानने की आवश्यकता नहीं, वो तो जानने में आ ही जाए। अपन पढ़ते ना एक एक गाथा, जो एक गम जानी सो सबों जानी, जो सबों अभी ना जानी, जो एक गम अभी ना जानी सो सबों अभी ना जानी। जो एक को अर्थात आत्मा को जानता मानो वो सबको जानता, और जो आत्मा को नहीं जानता वो सबका जो जान ले तो कोई काम का नहीं। आत्मज्ञान की प्रेरणा इससे मिल रही है। अकेली भक्ति तो अपन कर लेते हैं भगवान की, पर उससे प्रेरणा नहीं लेते, ये थोड़ी सी अपनी कमी है। किसी भी स्तुति से अपन को प्रेरणा लेते रहना चाहिए, जैसे ही भगवान के गुणगान करें उससे प्रेरणा ले लें कि हमारे लिए क्या कह रहे हैं आप, हमने तो आपकी प्रशंसा बहुत करी कि आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं, अब मुझे क्या करना, अपने लिए मुझे भी वैसा ही करें। आपने अपने इंद्री मन को जीत लिया, मैं भी कोशिश करूंगा। आपने अपने कर्मों को जीत लिया, मैं भी कोशिश करूंगा। आप दुनिया भर को जानने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करते, मेरी तो बहुत कमजोरी, मैं तो सब चीजें जानने की इच्छा में रहता हूं और मैं अपने से बेखबर रहता हूं। अब घर लौटूंगा आपसे ये प्रेरणा लेकर के कि मैं अपने बारे में ज्यादा जानूं, अर्थात अपने आत्मा के स्वभाव के बारे में जानूं, और बाकी चीजों को जानने का विकल्प ज्यादा ना करूं, और विकल्प करूं भी तो सिर्फ जानने रूप विकल्प करूं, राग द्वेष रूप विकल्प नहीं करूं। इतना भी अगर अपन इन दो लाइनों से प्रेरणा ले सकते हैं रोज, तो ये दो लाइनें हमारी भगवान की स्तुति की सार्थक हो जाएंगी। अर्थ क्या हुआ, भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, आप तीनों लोकों को जानते हैं फिर भी अपने आत्मा में लीन रहते हैं, और आप जिनेन्द्र हैं, अपने इंद्री मन को जीत लिया है भगवान आपने, आप हमारे हृदय में नित्य विराजमान रहो, जयवंत रहो, और हम भी आपसे प्रेरणा लेकर अपने मोहनी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म को जीत लें, क्योंकि आपने इनको भी जीत करके इस परम पद को प्राप्त किया है। ऐसी अपन अपने मन से अपने अपने भावों में इन सब चीजों को, अगर शब्दार्थ नहीं भी बने तो कोई अर्जा नहीं है, लेकिन भाव तो कम से कम अपने मन में आता रहे। आज ये बहुत तेजी से प्रचार होता है, अरे तुम्हें अर्थ ही नहीं मालूम तो पढ़ इसको का फायदा। हम कहते कि अर्थ नहीं मालूम हुए, लेकिन परमार्थ मालूम हुए तो काम बन जाएगा। दुनिया अर्थ के ही चक्कर में है, ये वाला अर्थ भी और इसका भी अर्थ, दो ही अर्थ, लेकिन अर्थ से काम नहीं बनेगा, परमार्थ से काम जनेगा। मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं, निरा मूरख हूं, अज्ञानी हूं, मुझे तो अर्थ तक नहीं मालूम हे भगवान, लेकिन इसमें आपकी स्तुति की गई है इतना जानता हूं तो कल्याण हो जाएगा। ये उसका भावार्थ याद रखना, बस शब्दार्थ जितना क्षयोपम है उतना आएगा। इसलिए अभ्यास तो शब्दार्थ का भी करना ठीक ठीक, लेकिन अगर शब्दार्थ भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्तुति कर रहा हूं भगवान का, गुणगान कर रहा हूं, ये भाव बना रहे। जय वीत राग विज्ञान पूर, पूर का मतलब होता फ्लड है ना, जैसे कहते हैं पूर आ गया, या कि फुलफिल पूरी तरह से भरा हुआ। आप जयवंत हो भगवान, वीतराग विज्ञान पूर्ण, आप काहे से भरे हुए हैं, वीतराग विज्ञान से। विज्ञान कहलाता है विशिष्ट ज्ञान, अपने यहां पर विज्ञान के मायने हैं विशिष्ट ज्ञान, वैसे विज्ञान की परिभाषा भी यही है, एक सुव्यवस्थित और सुनिश्चित ज्ञान का नाम विज्ञान। साइंट शब्द से बना हुआ है साइंस, साइंट के मायने होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो अनुभव से उत्पन्न हुआ ज्ञान है वो कहलाता है विज्ञान। और किसके अनुभव से, हम जैसे रागी द्वेषी के अनुभव से प्राप्त हुआ ज्ञान, कहते नहीं वीतराग विज्ञान, वीतरागता का अनुभव करने वाले ने जो जाना है वो सब वीतराग विज्ञान है, अर्थात केवल ज्ञान। कहते आप केवल ज्ञान से भरे हुए हैं, वीतराग विज्ञान तो वही है विशेष, और कैसे हैं? जयवंत हो आप, मोह तिमिर को हरण सूर। दुनिया तो दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व बनाने में अपने को सूरवीर समझती, लेकिन भगवान आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, आपने अपने मोह रूपी अंधकार को समाप्त करके पराक्रमी पना हासिल किया है। हम तो दूसरे को जीतने में अपना पराक्रम और सूरवीरता मानते हैं, आपने तो अपने अंधकार को हटा करके और ज्ञान का वो प्रकाश प्राप्त किया। केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अज्ञान का अंधकार हट जाए, पूर्ण अज्ञान का अंधकार घट जाने पर अपन देखा जाए तो केवल ज्ञान की अपेक्षा अपन सब अज्ञानी हैं। हाँ, ऐसा लिखा उसमें। और अभी राग द्वेष संयुक्त ज्ञान है अपना, सो भी अज्ञानी है, और सम्यक दृष्टि न हो वे तो फिर अज्ञानी है ही। सम्यक दर्शन के साथ तो सम्यक ज्ञान फिर भी हो जाता, लेकिन वो सम्यक ज्ञान हमारा केवल ज्ञान की अपेक्षा अभी भी अज्ञानी की कोटि में आता। तो कह रहे हैं आपने तो सारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट, ज्ञान को, ज्ञान का दोष नहीं है उतना जितना ज्ञान को विकृत बनाने वाली मोह का दोष। ज्ञान तो ऐसा है कि गंगा गए सो गंगा दास, और जमुना गए सो जमुना दास। सम्यक दर्शन के साथ है सो सम्यक ज्ञान, और मिथ्या के साथ में है सो मिथ्या ज्ञान। बोई हमें इसलिए क्या लिखना पड़ा स्तुति करने में कि मोह तिमिर को हर, आपने मोह के अंधकार को जैसे ही नष्ट किया तो आपको समीचीन ज्ञान हो गया। वास्तव में मोह से रहित ज्ञान ही समीचीन है, और हम सबका ज्ञान राग द्वेष मोह से ग्रसित है। भगवान के चरणों में बैठ करके क्या भावना भाएं कि हमारा ज्ञान भी थोड़ी देर को सही राग द्वेष से तो मुक्त हो जावे, अपने कल्याण की बात हमारे समझ में आवे इतना। और फिर कह रहे हैं जय ज्ञान अनंतानंत धार। और वो ज्ञान कैसा है, कितनी विशेषताएं बता रहे हैं। एक तो वीतराग विज्ञान है वो, और कैसा है जिसमें मोह का अंधकार हट गया है, और इतने नहीं अनंतानंत है, छोटा मोटा नहीं, अनंतानंत। और अब चूंकि आपने ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय इन कर्मों को नष्ट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके गुण स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए हैं। जैसे कि अपन के यहीं पर नीचे पानी हो और अपन को नहीं मालूम, लेकिन ऊपर की परतें हटा दी जाए तो पानी ऊपर आ जाता, ऐसी अपने आत्मा का स्वभाव भी और कर्म की परतों से पटल से ढका हुआ है, बेहट जावे तो अपना स्वभाव जो कहते हो प्रकट हो जाता है। यहां भी वही कह रहे हैं कि जैसे ही आपके ये मुंह का अंधकार हटा और चार घातीय कर्म नष्ट हुए, द्रग सुख वीरज मंडित अपार। एक तो अनंतानंत ज्ञान को प्राप्त हो गए, और इतने नहीं अनंत सुख, अनंत दर्शन, सॉरी पहले दर्शन कहना था, द्रग मतलब दर्शन, अनंत दर्शन, फिर अनंत सुख, और वीरज अर्थात अनंत वीर, मंडित अपार। इन सब से भी आप मंडित हो गए हैं, अर्थात इन सब से युक्त हो चुके हैं। कितनी विशेषताएं आपने प्राप्त कर ली हैं। मैं तो अपने थोड़े से ज्ञान का ही अहंकार कर बैठता हूं है? भगवान आपका ज्ञान तो अनंत है, हम तो बहुत कमजोर। दोनों चीज करते जाना, जैसे प्रभुपद पावन और मैं अपावन, हो गई पूरी विनती, अब और कुछ नहीं करना, इतने में हो गई पूरी, बाकी तो विस्तार है यही का। मुख्य बात तो यही है कि आप भी प्रभुपद पावन और मैं अपावन, आप पावन बन गए हैं, आप हमें प्रेरणा देते रहना, अभी हम अपावन हैं, आपके जैसे पावन बन सकते हैं, बस इतनी ही प्रेरणा मिलती रहे। वो यहां कह रहे हैं बार बार कि आपने अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरा तो ज्ञान अत्यंत अल्प है, आप अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर को, हम तो थोड़ा सा बल प्राप्त कर लेते हैं उसी में अहंकार कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें भौतिक सुख मिल जाता उसी में अहंकार कर लेते हैं। अरे आपने वास्तव में प्राप्त तो आपने किया है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर, इन सब से आप मंडित हो गए हैं। और ऐसा अगर अपने मन में विचार आवे तो क्या होता, वादिराज महाराज कहते कि आनंद भी होता और आंसू भी आते, दोनों चीजें। इसलिए लिखा है कि दर्शन करते समय आंसू बहने लगे, किस बात से, कौन सा दुख है, भगवान ने कछु कष्ट दो जो रोन लगे आप भगवान के सामने आके। कहते हाँ, आंखों देख करके अपनी मौजूदा स्थिति का स्मरण हो गया सो रोना आ रहा, और आपको देख करके हर्ष हो रहा के बन सकत इनके जैसे घबराओ ने। अभी वर्तमान में मैं पतित हूं, अपनी उस पतित अवस्था का आपके सामने आने पर स्मरण हो आया, इसलिए मन भराया है, रोने रोने का हो रहा, लेकिन आपकी वीतराग अवस्था को देखकर ये भी मन में भाव आता कि मैं भी ऐसे ही स्वभाव वाला हूं, इसलिए एक तरफ हर्ष होता है। बच्चों को देखो, माँ ने थोड़ी आंख दिखा दी तो आंसू आने लगे, और फिर धीरे से पुचकार लिया तो आंखें अब बह रही और चेहरे पर मुस्कान है। वो स्थिति जो है भगवान कभी नहीं होती, बहुत कम होती अपन की, उतनी निर्मलता नहीं है ना, उतनी सरलता नहीं है अपने मन में, बच्चों के अंदर रहती। अपन ने कभी ऐसी भक्ति करी कि भगवान के सामने आकर के वाणी गदगद हो जाए, आनंद आश्रु बहने लगे? किस बात का आनंद? कि मेरे स्वभाव का स्मरण हो गया मुझे आपको देखकर, और अपनी मौजूदा स्थिति कर्मों से ग्रसित मोह और राग द्वेष में पड़ा हुआ हूं, इस बात पर मुझे रोना आता। ये भक्ति जो है इस तरह भगवान के गुणगान और अपनी मौजूदा स्थिति की इसका एनालिसिस करते हुए और अगर अपन करें तो फिर ये भक्ति भी हमें बहुत आनंद देगी। क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान आप वीतराग विज्ञान अर्थात केवल ज्ञान से भरपूर हैं। आपने इसको कैसे प्राप्त किया है? आपने मोह के अंधकार को हटा करके इस चीज को प्राप्त किया है। और इतना ही नहीं, आपका ज्ञान अनंत है, आपका दर्शन अनंत है, आपका सुख और आपका सामर्थ्य या कि वीर या कि बल वो भी आपकी अनंत है। मैं भी आपके चरणों में अपना माथा टेक कर ऐसी ही सब गुणों को प्राप्त करने के लिए आया हूं। जय परम शांति मुद्रा समय। अब भीतर के गुण तो दिखाई पड़ गए, बाहर क्या दिखाई पड़ रहा? आचार्य श्री हमेशा कहते कि विचार करोगे तो भगवान की सर्वज्ञता दिखाई पड़ेगी, और भगवान बोलेंगे तब हितोपदेशीपना दिखाई पड़ेगा। और न भगवान बोल रहे हो मान लो, और न अपन को कोई जानकारी विशेष हो, पर एक चीज तो है, उनकी वीतराग मुद्रा तो सबके समझ में आती है। सर्वज्ञता समझ में आए, हितोपदेशीपना समझ में आए चाहे नहीं आवे, लेकिन प्राणी मात्र को वीतराग अवस्था तो सबको समझ में। पशु भी आकर के खड़ा हो जाए तो एक बार देखेगा, उसको नहीं मालूम कि ये सर्वज्ञ हैं या इतने गुण वाले हैं, लेकिन हैं बड़े शांत। क्या कह रहे हैं कि परम शांति मुद्रा समय। आपके अंतरंग में तो जो बात है सो है ही, आपकी जो बाह्य मुद्रा है वो भी अत्यंत शांत मुद्रा है, परम शांत। और भविजन को निज अनुभूति हेत। और इतने ही नहीं, जो भी भव्य जीव आते हैं, क्योंकि भव्य जीव से कहने का आशय यहां पर यह है कि जिसको सम्यक दर्शन की योग्यता है, जिसके पास थोड़ी बहुत भी दृष्टि की निर्मलता है, वो इस बात को समझ पाएगा। ये चीज ध्यान रखें, जिस मैंने क्या कहते कि अश्रद्धालु होवे तो उसको गुरु के अंदर गुरुता नहीं दिखेगी और देव के अंदर देवतापना नहीं दिखेगा, और शास्त्र में उसको कषाय मंद करने की कोई प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी अगर अश्रद्धालु है। और अगर थोड़ी भी श्रद्धा उसके भीतर है, थोड़ा विश्वास है, तो ये सारी चीजें। इसलिए लिखते कि भव्य जन को, जो भव्य जीव हैं जिनको ऐसी दृष्टि मिल गई है, वे आपकी उस वीतराग मुद्रा को देख करके भी अपने आत्मा की अनुभूति कर लेते। अनुभूति कर लेते का मतलब क्या? ऐसी ही मेरी भी आत्मा का स्वभाव है, इस बात का उनको अनुभव हो जाता। अनुभव और अनुभूति में थोड़ा फर्क है। क्या अपन को फर्क करना? अनुभूति तो होती है निजी, और अनुभव तो दूसरे से उधार भी होता है। जैसे अपन सबका अनुभव है, आप बता देना अगर गलती कहें तो, अपन सबका अनुभव है कि भैया विष खा करके मरण हो जाता है, तो का खा के देखो है का अपन? नहीं, अपन नहीं। लेकिन दूसरे को विष खा करके मरते देखा, ये हमारा अनुभव है। किसी से पूछ लो आप, वो कहेगा हमारा अनुभव विष खाने से मर जाते। तो क्या आपने अनुभव करके देखा है क्या? कहते नहीं, हमने दूसरे को खा करके देख के मरते देख, ये हमारा अनुभव। यहां पर जो अनुभूति शब्द है उसका भी अर्थ यही है कि भगवान जैसे आत्मस्वरूप को आपने प्राप्त कर लिया है, आपको देख करके मुझे भी इस तरह का विचार आ रहा है, इस तरह की अनुभूति कह लीजिए, इस तरह का अनुभव मेरे मन में आ रहा है कि मैं भी जो है इसी तरह अपने स्वभाव को, अपनी वीतरागता को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए आपकी यह परम शांत मुद्रा भी भव्य जीवों के लिए उस वीतरागता का अनुभव कराने में समर्थ है। भविभागन वच जोगे भविभागन वशाय, ऐसा लेना इसका, नहीं तो इसमें कई जगह भविभागन वश जोगे वशाय तो वो अर्थ नहीं बनता। फिर भविभागन वच जोगे वशाय, आपके हितोपदेश जब आप करते हैं, वचन योग आपके वाणी सुनने का कब हमको निमित्त मिलता है? भविभागन वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से ही आपका हितोपदेश होता है। एक तो कह रहे हैं कि आप अत्यंत वीतरागी हैं, हितो पहले सर्वज्ञता का वर्णन करके आ गए। हमारे भगवान की तीन विशेषताएं हैं, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। भगवान की सर्वज्ञता का वर्णन कर दिया, उनकी वीतराग मुद्रा और अंतरंग की वीतरागता का वर्णन कर दिया, फिर कह रहे हैं कि जो भव्य जीवों के भाग से उनके भाग्य के वशीभूत होकर के ही वच जोगे, अर्थात आपकी वाणी का, आपके हितोपदेश का भी हमें सौभाग्य मिलता है। और इतने ही नहीं, तुम धुनि भय सुनि विभ्रम नशाय, और आपकी उस वाणी को सुन करके हम सबका भ्रम भी नष्ट हो जाता है। अब बताओ, अब वहां भगवान बैठे हैं वेदी पर, अब उनकी सर्वज्ञता का भी अपन ही विचार करना चाहो तो कर लो। उनकी वीतराग शांत मुद्रा तो अपन को दिखाई दे रही, अब भी बोल तो है नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि जब वचन से बोला जाए तो ही बोलना है, भगवान निरंतर बोल रहे हैं। अगर अपन उनसे हितोपदेश लेना चाहें उनके सामने खड़े होके तो ले सकते हैं। नासाग्र दृष्टि है, संसार में देखने लायक कुछ नहीं है, आत्मा ही देखने योग्य है। कह रहे वो तो रोज कहते हैं, अपन नहीं सुन पाए, ये बात अलग है। कान चाहिए बहुत मजबूत वाले, हाँ, या तो इतना पुण्य चाहिए कि विदेह क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर के समूचरण में बैठे, और या पर यहां इतना थोड़ा सा ज्ञान चाहिए या थोड़ी सी समझ चाहिए कि वो निरंतर मूर्ति से जो हमें मैसेज मिल रहा है वो हम ले सके। मूर्ति तो मैसेज कन्वे कर ही रही है निरंतर, पैर में पैर डाले बैठे हुए हैं, जितना चलना था सब चल लिया, अब चलने के लिए कुछ शेष नहीं रहा, तुम कितना चलोगे? पांचों इंद्रिय और मन की यात्रा से कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। ठहर जाओ अपने आप, हाथ पर हाथ रखे, यहां पर करने योग्य कुछ नहीं है, आत्म कल्याण कर लो तो सारी चीज ठीक हो जाए, बताइए। और अत्यंत शांत है हर स्थिति में, ऐसा ही हमें भी शांत रहना चाहिए। ऐसा उपदेश हम आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि उस समय, अपनी दृष्टि तो सब्र दर्शन हो जाए, जल्दी से पूरे हो जाए, और बीच बीच में जो भी भाव आते रहते हैं, देखो तो इतने जी ने फूल चढ़ा दे हैं, इतने नहीं चढ़े आए, कैसो का करत हैं जी, और जब मूर्ति और जय तरफी उत्तर की तरफ भी है कि जब दक्षिण बनी है, जो मंदिर की का दिशा है कि कैसो मंदिर बनो है, बताओ। यही में जोन बात के लाने आए थे मंदिर बाबा तो गायब, और बाकी सब बातें दिख रही। अरे भगवान की वीतराग परम शांत मुद्रा मुझे जो निरंतर उपदेश दे रही है, वो उपदेश मुझे रोज लेना चाहिए, बाकी सब चीजें तो बहुत गौण हैं, उनको गौण ही रखना चाहिए, उनको प्रमुखता ना दे करके। प्रमुखता अगर अपन दें, पांच मिनट के लिए भी दें भगवान के सामने बैठ करके, कि सचमुच मेरा सौभाग्य कि आपका दर्शन हुआ, आंख नहीं खुलती तो क्या आपके दर्शन होते, और अभी तो बाहर अकेले की आंख खुली है, आपके पास बैठ बैठ करके भीतर की ओर खुल जावे तो फिर जीवन ही से पार हो जाएंगे अपन, तो फिर संसार से ही पार हो जाएंगे। ऐसा भाव जो है आना चाहिए। फिर से देखें, भगवान आपकी अत्यंत शांत वीतराग मुद्रा है जिसका मैं दर्शन कर रहा हूं, और उसके दर्शन करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही शांत और वीतराग मेरा भी स्वभाव है। सो मुझे अपने उस निस्वभाव का स्मरण हो आया, उसकी अनुभूति हो रही है, और आपकी जो हितोपदेश रूपी वचन भव्य जीवों के भाग्य से जो खिरते हैं, वे भी हमारे भ्रम को नष्ट करने वाले हैं। संसार में किस बात का भ्रम है अगर देखा जाए, हमारे जैसा स्वभाव है उसके विपरीत अपने को मान बैठे हैं, यही हमारा भ्रम। जैसे कोई रस्सी को सांप मान लेवे और फिर उससे भयभीत होता रहे, और जैसे ही पैर पड़ता है अंधेरे में तो रस्सी ऐसी लगती कि जैसे सर को, और लाइट जल जावे तो फिर हंसी आ जाती, गरीब तो रस्सी है उससे अपन डर रहे। ऐसे ही भगवान आपके सामने आकर के मेरा भ्रम टूट रहा है कि इस संसार में वास्तव में मैं भौतिक सुखों को सुख मानता हूं, ये मेरी भूल है, ये मेरा भ्रम है। आपकी इस परम शांत मुद्रा में ही मुझे सुख महसूस हो रहा है, मेरा भ्रम हटता चला। मैं अभी फिर यहां से जाऊंगा संसार में लौट करके, वहां सुख ढूंढूंगा लेकिन वहां नहीं मिलेगा, फिर आऊंगा यहीं पर, सुख तो यहीं मिलेगा। ऐसा मन में विचार आना चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा भ्रम टूटना चाहिए, तो कई लोगों का भ्रम तो और बढ़ जाता है। भी भगवान के चरणों में बैठी रहे तो कहते के भगवान हम रोज आए छत्र चढ़े हैं अच्छो खूब पैसा ही स्वभाव चाहिए मजा आना चाहिए अच्छी दुकान अच्छी चले चले बता जिसके चरणों में बैठ करके भ्रम तोड़ना चाहिए था एक और नया भ्रम पाल लिया कि भगवान तो फुर्सत बैठे हैं सो अपनी अर्जी लगाओ सुबह सब कछु काम करत रहे फुर्सत है उनको तो भी सब हमारे काम बनवाते रहे वो दुकान को लाइसेंस आ जावे वो तेरे लड़का पढ़ देगा सो को IIT में सिलेक्शन हो जावे सब काम भगवान के जिम्मे ऐसा नहीं लगने लगता कई बार कि जैसे भगवान फुर्सत है और अपने काम ही बना लिया बैठे भी सब सब उनसे कहते नहीं वो बहुत बड़ा काम बनाते हमारा अगर हम समझ जावे तो संसार इसे पार होने का काम बना देते जी संसार के छोटे मोटे काम का बनवा उन्हें उनसे अपन बनवाएं तो एक बार काम बनवा दे फिर कहते से पार ही हो जाए भगवान जी काम कर दो हमारा अगर आप करना चाहो ऐसा भाव आना चाहिए उसमें और फिर कहते तुम गुण चिंतत निज पर विवेक हे भगवान जैसे जैसे मैं आपके गुणों का चिंतन करता हूं मुझे क्या आत्मा का स्वभाव है क्या परक पदार्थों का स्वभाव है ये स्पष्ट होने लगता है विवेक जो है वो एनालिटिकल नॉलेज कहलाता है जिसमें कि हम चीजों को एनालाइज करके साफ साफ देखने लगते हैं दूध में पानी कितना है पानी का स्वभाव क्या है दूध का ज्यों जिय वो कहते थे ज्यों जल पय जिय मेला पे भिन्न भिन्न नहीं ये दोनों जैसे जल और दूध एक साथ मिले हुए हैं जिसे मालूम है कि जल का स्वभाव अलग है दूध का स्वभाव अलग है
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भई अरहंतादि जो विद्या सदी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक प्रयोग शुरू किया था वैसे हर व्यक्ति को यह पुरुषार्थ अनिवार्य रूप से करना चाहिए कि वो अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ क्षण ऐसे अवश्य निकाले जिसमें कि वो इस संसार के राग द्वेष और हर्ष विषाद के बीच कैसे साम्य भाव रख करके जीवन जिया जा सकता है इस बात का अभ्यास करें यह जो समता भाव धारण करने की साधना है वो दिनों दिन कम होती चली जा रही है हम लोग बहुत अधिक उत्सव प्रिय हो गए हमें रोज कोई ना कोई एक आयोजन चाहिए उत्सव चाहिए तभी हमारा मन लगता है और उत्सव भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि फूहड़ गीत गाए जाएं भजन के नाम पर या कि नृत्य गान की जगह पर गा बजा करके पूजा इत्यादि करी जाए या और कोई इंटरटेन के लिए कुछ किया जाए, ये हमारी आदत में हो गया है वर्षों से। हम चाहते हैं कि इस आदत को हम बदलें, क्योंकि सिर्फ धर्म के स्थान पर और अपने मनोरंजन के लिए कुछ कार्य कर लेने से जीवन में जीवन की सार्थकता नहीं हो पाती है। जरूरी है कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए भी कुछ करें, और वो बहुत सीधी सी प्रक्रिया है कि सुबह शाम हम एक ऐसा अभ्यास करें, हम देखें अपने जीवन में झांक करके कि हमने कल जहां से जीवन की यात्रा शुरू की थी उसमें कितने कदम मेरे क्रोध की तरफ बढ़े हैं और कितने मेरे कदम क्षमा की तरफ बढ़े हैं, कितना मैं अहंकार की तरफ आगे बढ़ा हूं या कि मैंने कितनी विनय धारण की है, कितना मेरे जीवन में छल कपट को मैंने प्रवेश दिया है या कि मैंने अपने जीवन में सरलता को बनाए रखने का पुरुषार्थ किया है, दिन भर में मेरे अंदर कितनी आसक्ति ममत्व भाव लोलुपता बनी रही या कि मैंने बहुत मौकों पर संतोष धारण किया है। अगर इस तरह हम अपने जीवन में झांक करके उन थोड़े से क्षणों में देखें, कल एक बहुत अच्छा सजेशन मुझे दिया गया, लोग बैठे थे इंजीनियर्स, तो उन्होंने कहा अपन ऐसा कुछ शुरू करते हैं महाराज, मैं अगली बार चार्ट बना के लाऊंगा और सब लोग करें या ना करें, कुछ लोग तो उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे जिसमें डेली डायरी होगी, जिसमें अलग अलग कालम होंगे, कषायों के और पाप के कालम होंगे, क्रोध के कितने अवसर आज मेरे आए, आज 27 या 28 अवसर आए दिन भर में, मैं लिख लूंगा कि आज 28 अवसर क्रोध के थे जिन पर मैंने पूरे पे क्रोध किया है, और फिर मैं इस तरह से रोज उस चार्ट को फिलअप करूंगा कि मैंने आज कितना छल कपट किया, कितनी मायाचारी करी है या कि कितना अहंकार, कितना सम्मान पाने की मेरे अंदर कितने अवसर आए हैं, 10 अवसर आए हैं जबकि मैंने सम्मान पाने की चेष्टा की है, और फिर एक हफ्ते में हम देखें कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, तब संभव है कि थोड़ा बहुत हमारे अंदर जागृति आएगी, वरना तो ये रोज जो है हम सुन करके और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा बहुत हमारे मन में याद भी रहता है पर उतना नहीं रह पाता। एक प्रक्रिया हमें शुरू करनी पड़ी, एक प्रयोग शुरू करना पड़ेगा कि कल वो जो 27 मौके पे मैंने गुस्सा किया था उसमें से आज 26 हुए हैं, 25 हुए कि नहीं हुए, और एक हफ्ते में पहुंचते पहुंचते कभी कभी वो ग्राफ ऊपर बढ़ गया हो सकता है, 27 से बढ़ करके और 50 पे पहुंच गया हो, फिर एकदम झटके से और याद आ गया कि क्या कर रहे हैं अपन, तो 27 से बढ़ के 50 पे पहुंच गए, वापस आओ, अब गुस्से के मौके कम करना है अपने को, तो हो सकता है कि बिल्कुल प्लेन आ जाए ग्राफ की, कोई हमने उस दिन क्रोध नहीं किया जबकि मौके बहुत आए थे। ऐसा हम प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ थोड़े से परिवर्तन आएंगे। आज मेरे मन में कितनी मिथ्या मान्यताओं ने मुझे घेरा और कितनी मेरे मन में सच्चे देवगुरु शास्त्र की बात मानने की इच्छा हुई, और कितनी मिथ्या मान्यताओं में मैंने धर्म मान करके उनको अपनाया है, इस तरह से मैं अपने मिथ्यात्व को गौर से देखूंगा, अपनी कषायों और अपने मिथ्या भाव को, ये एनालिसिस जो है वो हमें खुद करना पड़ेगा, और इसी के लिए ये प्रक्रिया अपन ने शुरू की है जिसको शास्त्र की भाषा में सामायिक कहते हैं, ये धीरे धीरे करके और समाप्त होती जा रही, अपन उसको पुनः शावक के जीवन में, मुनिजनों के जीवन में तो सामायिक की प्रक्रिया है फिर भी, लेकिन एक सामान्य सदगृहस्थ के पास में यह प्रक्रिया होनी चाहिए सुबह शाम, लेकिन कम हो गई है या कि नहीं ही रही है, उसको हम फिर से शुरू करें, और उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए इस पर हम विचार कर चुके हैं। अब आखिरी बात और अपन को समझ लेनी है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चारों का हम ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे बाहर से, वाह्य सुदशु वास्तुसु ममत्व मुत्सृज निर्ममत्व रता स्वस्था संतोष परा परिचित्त परिग्रहाद विरता। पहले मैं द्रव्य की अपेक्षा से इतना ही करूंगा कि जितनी देर मैं अपने समता भाव की साधना करूंगा, जितनी देर मैं पंच परमेष्ठी का स्मरण करूंगा, उतनी देर के लिए मैं समस्त बाह्य वस्तुओं से ममत्व को हटाता हूं, यथाजात रूप धारण करता हूं। यथाजात रूप धारण करने के मायने यही है कि मैं अपने अंतरंग में वीतराग भाव धारण करता हूं, या कि ममत्व छोड़ता हूं अंतरंग में और बाह्य में जो भी मकान दुकान धन संपदा मेरे पास है उससे मैं ममत्व घटाता हूं, उतनी देर के लिए मैं उसे छोड़ देता हूं। 10 मिनट के लिए कहीं जा थोड़ी रही है कि आपके छोड़ने से, और जैसे आपने कहा कि मैंने मकान छोड़ा और मकान उड़ करके चला गया कि चले हम, आपने छोड़ दिया मुझे, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे घबराने की भी बात नहीं है। 10 मिनट के लिए मैं अपना नहीं मानूंगा जिन जिन चीजों को, जो अपनी नहीं है मुझे अपने होने का भ्रम हो गया है, उनके लिए मैं 10 मिनट के लिए ईमानदारी से अपना नहीं मान रहा हूं। बस इतना ही काम करना, फिर बाद में तो जो जैसा है जो रहेगा वो, कहीं नहीं जाने वाला। पर वो जो 10 मिनट का अभ्यास है उसमें मैं इन चीजों से, इन विकल्पों से मुक्त होता हूं। परिचित्त परिग्रहात विरता, जिसने मेरे मन को घेर रखा है, परिसमंतात पूरी तरह से मेरे चित्त को जिसने अपनी ग्रिप में ले रखा है, वो परिग्रह कहलाता है। वो जो मेरे अंदर मूर्छा का भाव है मैं उसे छोड़ता हूं और फिर बैठता हूं। कहां बैठूं? निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तु सुचा, स्थान तय करना पड़ेगा जहां कोई बाधा ना हो, सहज रूप से। वनेषु वास्तु सुचा, हो सकता है मैं कभी जंगल में बैठूं और हो सकता है अपने मकान के भीतर ही बैठूं। चैत्यालयेषु वापि च, संभव है कि कभी कभी मैं उस समत्व की साधना के लिए करने के लिए चैत्यालयेषु वापि च, मैं चैत्यालय में भी बैठ सकता हूं। क्षेत्र लेकिन मैं ऐसा चुनूंगा जहां बैठ करके मेरी एकाग्रता सत सके, जहां मेरे संकल्प विकल्प कम हो वो क्षेत्र मैं चुनूंगा, क्योंकि अभी मेरा उपादान इतना मजबूत नहीं है कि मैं जहां चाहे बैठ करके उस समता भाव की साधना कर सकूं। मैं शुरुआत कर रहा हूं इसलिए ऐसे स्थान पर बैठूंगा जो पहले से बाधा से रहित हो, वो खोज करके जहां मेरा मन आसानी से लग सके, जहां मैं अपने आप के बारे में विचार कर सकूं। और मूर्द्रोह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक वंदनम चापिचा स्थान उपवेशनम समयम जानाति समयज्ञ, जो आत्मा के जानने वाले समयज्ञ, जो आत्मा को जानने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जब जब भी हम समता की साधना शुरू करें, सामायिक करें, तो समय निर्धारित कर लेवें। समय निर्धारित करने का क्या ढंग है? पुराना ढंग, आज का ढंग अलग है कि हम 48 मिनट करेंगे, दो घड़ी का समय है। पर वो दो घड़ी का समय कैसे कैलकुलेट करें? तो घड़ी से भी कर सकते हैं। और दूसरा ढंग ये है कि मूर्द्रो मुष्टिवासो, हाथों की मुट्ठी को ऐसे बांध करके बैठूंगा, धीरे धीरे एकाग्रता सकती जाएगी, मुट्ठी जो है ढीली पड़ती जाएगी, जब हाथ खुली जाएंगे हो गया, मेरा समय हो गया, सामायिक पूरी हो गई। हां, ये भी एक ढंग है। अपने बालों को ठीक ढंग से बांध बूंद करके मैं बैठ गया हूं, और जब तक बैठा रहूंगा, जब तक कि वे बंधे हुए हैं, जब छूट जाएंगे, बेईमान लोगों का काम नहीं, नहीं तो झंडमर में छोड़ छोड़ लो आप, ये ईमानदार लोगों के लिए बता रहा हूं। नहीं तो आप कहो कि वो मुट्ठी का कहां था, तो वो तो एक मिनट में छूट के ही हो गया समय हमारा पूरा। नहीं, वो सहज भाव से बंधम पर्यंक वंदनम चापीचा, और जो आसन लगाया है पर्यंक पर्यंक आसन, और सब वस्त्रों को बांध करके गांठ लगा करके बैठ जाते हैं, वो जब सब शिथिल पड़ जाएंगी तब तक मैं सामायिक करूंगा। ऐसे समय का, या कि दो घड़ी करूंगा, ऐसे समय का निर्धारण, मैं इसको दूसरी भाषा में कहता हूं कि जब जब भी एकाग्रता की साधना करनी हो,
समता भाव की साधना करनी हो तो फिक्सेशन ऑफ प्लेस, फिक्सेशन ऑफ टाइम, फिक्सेशन ऑफ पोजीशन और फिक्सेशन ऑफ मंत्र, चार चीजें फिक्स कर लें। एक निश्चित जगह पर रोज बैठा करूंगा ताकि वो फील चार्ज हो जाए, हमारे अपने विशुद्ध परिणामों से वो क्षेत्र और अपने आप उस जगह पहुंच करके लगने लगेगा कि मैं तो इस जगह आया हूं जहां कि मुझे अच्छे विचार करना है, जहां मुझे बैठ करके समता की साधना करनी है। तो वो क्षेत्र पर पहुंचते ही मन पवित्र हो जाए और एक निश्चित समय, ताकि बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाए हमारे भीतर, 7 बजे का समय रखा है तो 5 मिनट पहले से कोई भीतर कहने लगे कि भाई अब तो देखिए मेरा समय होने वाला, मेरा सामायिक का समय होने वाला, अब सबसे विदा, अब सबको प्रणाम, सबसे क्षमा, अब मैं जरा बाद में मिलूंगा आपसे 48 मिनट के बाद या 24 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, जो भी हमने निर्धारित किया। तो वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन गई हमारे भीतर, उस चीज को अपने आप ही हमें करना है, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम सहज भाव से इतना अभ्यास हो जाएगा कि वो समय होते ही हमें स्मरण में आ जाएगा। और एक निश्चित पोजीशन, बैठने का एक ढंग जिसमें हम आसानी से बैठ सकें, बार बार चीज ना करना पड़े, आसन सिद्ध हो जाए। रोज बैठेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, नहीं तो 10 दफे हिलाना पड़ेगा उसी को कि नहीं बन रहा। और फिर एक कोई एक मंत्र जिस पर कि मुझे एकाग्रता करनी, शुरुआत तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, नवोकार मंत्र ले लिया है, नहीं तो रोज मंत्र बदल रहे हैं, आज ये कल वो, तो ऐसे ना चलेगा। एक निश्चित मंत्र है, उसको मैं उच्चारण करना सीखूं, फिर चिंतन बाद में, चिंतन क्या करना वो अपन अभी देखेंगे, सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए, पर पहले ये देख लें कि मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं, ये तैयारी है। उपलब्धि हमने पहले जान ली कि सामायिक से मुझे क्या क्या उपलब्ध होने वाला है, प्रक्रिया यह है कि मैं इस तरह से अपने को व्यवस्थित करके बैठूं, विचार क्या लाना है मुझे उस पर भी अपन आज विचार कर लेते हैं, पर पहले उस मंत्र का उच्चारण करना सीखें, जोर से उच्चारण करें, इतने जोर से कि मुझे तो सुनाई पड़े, बाजू वाले को ना सुनाई पड़े अच्छा है, इतने जोर से भी नहीं कि बाजू में सबको सुनाई पड़े, इतने जोर से भी, इतने धीरे भी नहीं कि अपने को ही नहीं सुनाई पड़े, पहले ऐसे मंत्र का उच्चारण करें नमो अरिहंतानम, फिर सिर्फ होंठ हिलें और आवाज ना हो, पर आवाज जो पहले कही गई थी वो अभी कानों में है कि कोई कह रहा है नमो अरिहंतानम, और सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, और फिर होंठ भी नहीं हिले और फिर मन में नमो अरिहंतानम, और फिर जोर से, फिर होंठों में, फिर मन में, फिर जोर से, फिर होंठों में, फिर मन में, एक साइकिल बन गया, अब एक निरंतरता बन गई। मुझे अभी कोई काउंट नहीं करना है कि कितने बार हो गया है, कितने नहीं हो गए, मैं तो सिर्फ एक प्रक्रिया दोहरा रहा हूं। 5 मिनट तक आप देखेंगे कि सब तरफ से डिटैच हो गए और मन एकदम जो है शांत धीरे धीरे हो गया, रिलैक्स हो गया कि हाँ ठीक, अब मैं तैयार होता हूं, अब मुझे विचार करना है। चाहे तो उसी जाप को हम 108 बार तक करें, होता यह है कि अपन शुरू में ही 108 माला के मन के फिराना शुरू कर देते हैं और जाप देना शुरू कर देते हैं, और 10-25 तक तो जरा मन लगता है, उसके बाद जप की आना शुरू हो जाए, नेचुरल है, क्योंकि एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज के। ये जो हमने कहा था आपसे कि किसी भी चीज के लिए लगातार कहा जाए तो एक ऊब पैदा होने लगती है। जैसे बच्चे को मान लो क्या करती, वो घुटने पे ले लिया और हिलाना शुरू किया और थपकी देना शुरू की, आ करना शुरू किया, वो निरंतर आ आ और निरंतर एक रिदिम, वो रिदिम बनने से वो ऊब जाता है, वो कहता अब चलो सो या, परेशान हो गए, थक गए, ये क्या मचा रखा है, वो कहता नहीं है लेकिन उसके भीतर यही लगता है कि क्या मचा रखा है, बल्कि एक रिदिम शुरू हो गई और फिर आ की ध्वनि आ रही, ये क्या चीज है। अगर हम इस तरह की प्रक्रिया करेंगे जैसे कि सभी लोग कर रहे हैं, अधिकांश अपन सबके साथ ये शिकायत है कि महाराज फिर थोड़ी देर तो मन लगता है, वो 108 तो बाद में बमुश्किल पूरे होते हैं, बीच में या तो नींद वींद आ जाती है या कि किसी भी तरह से दूसरे मिथ्या विचार चलते रहते हैं और माला फिरती चली जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने पहले अपने आप को साधा नहीं है। वो जो एक प्रक्रिया है कि मैं जोर से बोलूं होठों में फिर मन में, मन में तो बहुत बाद की, अंतर जल्प तो बहुत बाद में होता, पहले बहर जल्प में ही तो एकाग्रता सद जावे, फिर बाद में आत्मा का चिंतन। वरना होता क्या है, आत्मा के चिंतन के नाम पर जो काल्पनिक बातें हैं ग्रंथों में लिखी हैं वो ही दोहराई जाती हैं और लगता है हो गई एकाग्रता। हां ये ध्यान रखना, या कि मैं शिखर जी पहुंच गया वहां पर पहली वाली टोंक पर दर्शन कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं, फिर ऐसे जा रहा हूं। कई लोग ऐसा इमेजनरी ध्यान करवाते, ये इमेजनरी है, इमेज करो, सपोज करो कि तुम ऐसे ऐसे फील कर रहे हो, होता होता कुछ नहीं, बैठे वहीं रहते हैं, बस अकेला मन जो है वहां घूमता रहता। ये भी एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं शुरुआत के लिए है। वास्तव में हमें करना क्या है, पहुंचना कहां है, हमें तो समता भाव की साधना करनी। ये तो अपने को एंगेज करने की प्रक्रिया, किसी भी तरह से बाह्य वातावरण से डिटैच करके और अपने को कहीं ना कहीं एंगेज कर लिया, लेकिन वास्तव में मुझे जो उपलब्धि है वो ये नहीं है। ये तो सिर्फ जैसे कि बच्चों को गिनती सिखाते समय और कुछ दाने और एक उसमें पिरो दिए जाते हैं, खिसकाओ इनको एक दो ऐसे, और फिर बाद में फिर हाथ की उंगली पे गिनो, और फिर बाद में मन ही मन में गिनती होने लगे, फिर इसकी हाथ की और माला की मन के कि किसी की जरूरत नहीं रहती। हम पहुंचना वहां चाह रहे हैं, शुरुआत हमारी इस तरह से हो। और फिर कहते हैं आचार्य भगवान कि इतना यदि सद जाता है तो अब एकाग्र होकर के विचार करें कैसा है संसार और मुझे इस संसार से पार होने के लिए क्या करना चाहिए। अशरण अशुभ अनित्यम दुख मनात्मान माओ साम्य भवम मोक्षस्तद विपरीतात् एतिध्यायन तु सामयिके। जब जब भी मैं समता की साधना करूं, सामायिक में बैठूं, मेरे अंदर क्या विचार होना चाहिए। अशरण, यह संसार शरणभूत नहीं है। और अनित्यम, दो चीजें एक साथ, दो सच्चाइयां हैं जिनसे कि मुझे आमना सामना कर लेना चाहिए। एक सच्चाई यह है कि एक दिन मेरी आयु पूरी होने पर मुझे मरना पड़ेगा, इतना जीवन क्षणभंगुर है। तो थोड़ा सा मन में आता है कि रहो क्षणभंगुर, लेकिन है मेरे पास इंतजाम बहुत सारे, मैं अपने आप को बचा लूंगा। तो दूसरी ओर मर्म भेदी सच्चाई कह दी जाती है कि बचाने वाला कोई नहीं है, मरना निश्चित है और मरण से कोई बचा नहीं सकता। दो चीजें बताइए आप। हमने तो सोचा था कि चलो मरना निश्चित है, सो हम उपाय कर लेंगे बचने के, लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि उपाय भी कोई नहीं चलेगा। दलवल देवी देवता माता पिता परिवार कोई भी रखे रहो आप, लेकिन जिस क्षण मरण आएगा उस क्षण कोई मुझे बचा नहीं पाएगा। तो मरण की अनिवार्यता और मरने से कोई बचा नहीं सकता है इस बात का एहसास, ये दोनों चीजें क्या उस समय अपन को होती हैं? होना चाहिए। तब क्या होगा, एक गहरी निश्चिंतता हमारे भीतर आएगी कि जब मरना निश्चित ही है तो मैं घबराता क्यों हूं। जो चीज अनिश्चित हो, जिसका कोई भरोसा ना हो, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, उसके बारे में तो घबराहट हो सकती कि पता नहीं भाई क्या होगा, लेकिन जो चीज बिल्कुल तय है कि ये हो गई तो फिर घबराने की क्या बात, फेस करें उसको, तब तो फिर उसका सामना ही किया जा सकता है। जब मृत्यु मेरे लिए अनिवार्य है तब फिर मैं क्या विचार करूं कि अब जब मृत्यु अनिवार्य है तो जरा सावधान हो जाऊं, मरते समय गाफिल ना होऊं, मरते समय सावधानी पूर्वक मरूंगा। मेरी अपनी असावधानी की वजह से बार बार मरना पड़ता है, एक बार जरा होशियारी से मर जाऊं तो ये बार बार मरने का झगड़ा खत्म हो जाए। पहली क्लास में अगर होशियारी से पेपर करो तो पास हो जाओगे तो दूसरी कक्षा में पहुंच जाएंगे, और अगर जरा गड़बड़ कर दी तो पहली में ही डरे रहेंगे। ऐसे यहां पर है कि संसार में मरण के समय अगर आसक्ति ने घेर लिया तो फिर से संसार मिलेगा, और संसार से आसक्ति नहीं रही तो फिर काय को मिलेगा, फिर तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा कि आपकी यहां इच्छा ही नहीं है आने की, तो फिर क्या। इतनी छोटी सी चीज और अपन के विचार में आनी चाहिए, अभी तो विचार में नहीं आती, अभी तो और दुनिया भर की बातें विचार में आती हैं, ये सच्चाई विचार में नहीं आती। अभी तो ये सच्चाई अगर क्षण भर को सामने आती है तो डिनायल ऑफ रियलिटी, भीतर भीतर एक मैकेनिज्म होती है मन में, उसको हम इग्नोर करते हैं, अनदेखा करना शुरू कर देते, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो और लोगों के साथ होता है, मरण तो और लोगों का होता, मेरा तो नहीं होगा, मैं तो अभी कल का प्लान कर लूं, जरा 10 मिनट मिले हैं मुझे खाली, तो कल मुझे क्या क्या करना है ये प्लान कर लूं। देखना आप, अगर किसी को 10 मिनट खाली मिल जाए तो वो ये प्लान करता है कि कल क्या करूंगा, वो ये प्लान नहीं करता है कि इसके अगले क्षण अगर मुझे और आखिरी सांस होगी तो मुझे क्या कर लेना चाहिए इस क्षण, क्योंकि आखिरी सांस का मुझे भले ही नहीं मालूम लेकिन तय तो है आखिरी सांस, वो किसी भी क्षण आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है, ये अनसर्टेनिटी है, और आ आएगी अवश्य, ये बिल्कुल सर्टेन है, ये निश्चित है। ऐसा विचार अगर अनित्य का और अशरण का दोनों का हमारे मन में आए तो होगा क्या? होगा ये कि जितने रिश्ते हमने बनाए हैं, जितनी धन संपदा और पद प्रतिष्ठा इकट्ठी करी है अपनी सुरक्षा के लिए, वो सब बेमानी मालूम पड़ने लगेगी, इतना होगा। और फिर उन सब से जो शिकायत होती है वो शिकायत नहीं होगी, ये दूसरा लाभ। उनसे जो अभी तक अपेक्षा है अपनी सुरक्षा की, अब कोई अपेक्षा भी नहीं रहेगी। अपेक्षा नहीं रहेगी तो शिकायत नहीं होगी। कोई किसी को जीवन के अंत समय पर डॉक्टर वैद्य बुला करके दवाई दिला सकता है, सगा बेटा भी क्यों ना हो, दो सांसें एक्स्ट्रा अपनी निकाल के किसी अपने पिता को नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? कितनी लिमिट है हमारी, उस सीमा को पहचाने तब फिर हम दूसरे से इतनी अपेक्षा क्यों रखते हैं कि वो मेरी सुरक्षा करेगा। मेरी सुरक्षा करने के लिए तो मेरे अपने परिणाम है, मुझे इस संसार की नश्वरता से बचाने वाला मेरा अपना आत्मरुझान है, मेरे अपने आत्मा में लीनता, वो कभी नष्ट ना हो। संसार में सब चीजें नष्ट हो जाएंगी लेकिन मेरी अपनी आत्मा की जो विभूति है, जो मेरी आत्म संपदा है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली। और मेरे लिए शरणभूत कौन है? मेरा अपना स्वभाव जो अरंत और सिद्ध भगवान ने प्राप्त किया है, जिसको कि आचार्य उपाध्याय और साधु जन प्राप्त करने में लगे हैं, ये पंच परमेष्ठी मेरे लिए शरण है संसार में बचाने वाली। और ये भी मुझे मृत्यु से नहीं बचा सकते, सब एक साथ भी सिद्ध भगवान आके खड़े हो जाएं मेरे मरण के समय और बचाना चाहें तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, मुश्किल में पड़ गए? सारे भगवान भी आकर के मुझे मृत्यु से नहीं बचा सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, वो मुझे मृत्यु के भय से बचा सकते, बस इसीलिए वो मेरे लिए शरण है। चत्तारी शरणम पवज्जाम, मैं चार की शरण इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे मृत्यु के भय से बचा लेते हैं, मृत्यु से तो नहीं बचा सकते। मृत्यु से तो मैं बचना भी क्यों चाहूं, मृत्यु तो अनिवार्य है, वो तो सांसें हैं, मैंने जितनी बांधी हैं उतनी पूरी हो जाएंगी तो मुझे दूसरी देह धारण करने के लिए मिलेगी। और अगर वाकई में मृत्यु से भयभीत हूं तो विवेति मृत्यो न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा, तथापि वालो भय काम ब्रसो व्यथा स्वयं तप्यत इति अवादी। हे भगवान, यहां हम व्यर्थ ही और दुखी होते रहते हैं। विवेति मृत्यो, अकेले मृत्यु से भयभीत होने से क्या कोई मृत्यु से बच सकता है? और मोक्ष की आकांक्षा करने से क्या किसी को मोक्ष मिल सकता है? अरे नहीं, मृत्यु से बचने और मोक्ष को पाने के लिए मुझे उपाय करना पड़ेगा। मृत्यु से बचने का उपाय सिर्फ इतना ही है कि मैं इस जन्म मरण इन दोनों की प्रक्रिया को नष्ट करने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को प्राप्त कर लूं, वही मेरे लिए मुक्ति का उपाय भी है और वही मुझे जन्म मृत्यु से बचाने वाला सबसे सार्थक उपाय है। ये मेरे मन में आना चाहिए उन क्षणों में। कैसे विचार करें देखिएगा, सामायिक के समय पर इस तरह यदि हम विचार करें, जब उससे बाहर आएंगे तो क्या स्थिति बनेगी कभी सोचिएगा, फिर क्या लगेगा? जिन जिन चीजों को सहेज के संभाल करके कि ये हमेशा बनी रहेंगी रख रहे थे, अब जैसे ही सामायिक से बाहर आए क्या लगेगा? हंसी आएगी कि क्या इन सब चीजों को संभालने में लगा रहता हूं व्यर्थ में, ये यहां रखो रे, ये यहां रखो रे, ये गड़बड़ नहीं करो तुम, टूट फूट ना हो जाए, दुनिया भर की व्यर्थ है ये सारी चीजें, किस किस को संभालूंगा, सब क्षणभंगुर है यहां पर। यहां तो पानी पर खींची हुई रेखा तुरंत मिटती मालूम पड़ती है इसलिए क्षणभंगुर दिखती है, रेत पर खींची गई रेखा हवा चलने पर मिट जाती है, पत्थर पर खींची जरा देर तक टिकती है पर मिटती वो भी है। यहां तो कोई भी चीज हो जो कि एक ना एक क्षण और समाप्त तो हो ही जाने वाली है, ऐसी स्थिति में मैं संभालूं तो अपने परिणाम संभालूं, चीजें ना संभालूं, बस इतना ही है। उन चीजों के माध्यम से मैं अपने परिणाम बिगाड़ लेता हूं, मुझे अब सामायिक में मैंने सीख लिया है ऐसा विचार करके कि चीजें बनती बिगड़ती हैं, वो उनका उत्पाद वे स्वभाव है, मुझे तो उनके पीछे छिपी हुई ध्रुवता की तरफ ध्यान देना, मुझे इस नाशवान और क्षणभंगुर संसार के बीच में अपनी आत्मा की शाश्वतता में एकाग्र होने का विचार करना चाहिए, मुझे इस सारे अशरणभूत संसार में अपनी ही जो परमात्मा अवस्था है वो शरण है, या कि पंच परमेष्ठी मेरे लिए शरण है, ऐसा मुझे विचार करना। और अशुभ, ये संसार अशुभ है, जान पड़ता है कि बहुत भला है लेकिन है बड़ा अशुभ, ये तो ठीक ऐसा ही है जैसे कि बहेली आकर के चावल फैला देता और उसके ऊपर से धीरे से बारीक सा जाल बिछा देता है और पक्षी पेड़ पर बैठे हुए बड़े प्रसन्न होते हैं कि बहेलिया महाराज यहां से हटो भरतो और हमने चुने सब दाने और उड़ गए फुर्रे से। लेकिन जैसे ही बहेलिया पेड़ की ओट में छुप जाता है और पक्षी सोचते हैं कि दाने खाऊं और जैसे ही दाने खाने नीचे उतरते हैं तो दाने भी तो मिलते हैं पर साथ में जाल में फंसना भी पड़ता है। दिखता है यहां संसार में सब भला शुभ है लेकिन ये बहुत अशुभ है। दुष्यंत कुमार ने दो लाइनें लिखी है तो वो गजल, लेकिन मैं सोचता हूं कि कैसे उन्होंने ये विचार आया होगा। आया होगा, हर एक आत्मा के भीतर अपनी उस विशुद्ध परिणति की थोड़ी बहुत झलक तो होती ही होती है। वो लिखते हैं कि यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो और यहां से चले उम्र भर के लिए, कभी यहां संसार में लौट के ना आना पड़े। यहां तो हम सोच रहे कि पेड़ के नीचे छाया मिलेगी लेकिन यहां तो दरख्तों के साये में भी धूप लगती, यहां तो जिन जिन चीजों में सुख मानते उनमें से भी दुख निकलने लगता है। बड़ा भ्रम है यहां तो, बड़ा धोखा है यहां तो, बड़ा अशुभ है। ऐसा विचार और जो कुछ भी यहां संसार में है वो सब दुख रूप ही है। मुझे लगता जरूर है सुखाभास मुझे लगता है लेकिन है मुझे सब चीज दुख रूप ही। ऐसा विचार करना संसार के बारे में और मोक्षस तद विपरीतात्, वो मेरी जो मुक्त अवस्था है, जो मेरी स्वाभाविक अवस्था है, ये तो मेरी अपनी वर्तमान की मौजूदा स्थिति है लेकिन मेरी स्वाभाविक अवस्था क्या है इसका विचार करें ताकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे भीतर आए कि मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं। वो स्वाभाविक अवस्था कैसी है? वो तो शाश्वत, वो अनित्य नहीं है, वो तो शरणभूत है, वो दुखरूप नहीं है, वो तो शाश्वत सुखरूप है और वो अशुभ नहीं है, वो तो अत्यंत शुभ है और शुद्ध ही है। इस तरह से मोक्ष ठीक विपरीत है और संसार जो वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में विचार करें। ये निरंतर विचार हमारे भीतर परिवर्तन लाएगा, हमारे अपने स्वभाव में परिवर्तन आएगा, हमारी अपनी आदतों में परिवर्तन आएगा, हमारे जीने की स्टाइल बदल जाएगी। मैं आपसे कहता हूं अगर छोटा सा ये प्रयोग हम अपने जीवन में शुरू करते हैं तो इस